वैदेही अपना मोबाइल लेने यशवर्धन सिंह के घर पर आई हुई थी। यशवर्धन उसके लिए कॉफ़ी बनाने गया था, जबकि वो बाहर गार्डन में बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद यशवर्धन अपने हाथ में ट्रे लेकर बाहर आया, जिसमें कुछ स्नैक्स और एक कॉफ़ी मग तो एक चाय का कप रखा हुआ था। उसे देखकर वैदेही ने कहा, इंटरव्यू में हम लोगों ने आपकी पसंद नापसंद तो पूछ ली, लेकिन बहुत सी चीज़ें पूछना भूल गए। चलिए मैं आप पूछ लेती हूँ, क्या आपको कुकिंग करना आता है जो आप ये सब बनाकर लाए हैं? यशवर्धन ने ट्रे को टेबल पर रखा और वहीं एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ, हम हॉस्टल में रहे हुए हैं तो ये सब आना तो ऑब्वियस है, कहकर उसने कॉफ़ी का मग वैदेही को पकड़ाया और खुद के लिए चाय का कप उठा लिया। लगता है आपको कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, वैदेही ने पूछा। सही कहा आपने, जो बात चाय में है वो आपकी इस कड़वी कॉफ़ी में कहाँ, यशवर्धन ने मुस्कुराकर कहा और वैदेही की तरफ देखने लगा। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे, जिसे वो बार बार अपने कानों के पीछे करके उन्हें उड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पड़े रहने दीजिए ना, यशवर्धन ने खोए हुए स्वर में कहा। क्या? वैदेही ने हैरानी से पूछा। मैं आपके बालों की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा ही इन्हें बांध कर रखना चाहती हैं, लेकिन आज ये भी मदमस्त होकर इन हवाओं में उड़ रहे हैं, यशवर्धन ने खुद को संभाला और सामान्य होकर जवाब दिया। वैदेही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। आज आप काफ़ी अलग लग रही हैं और अच्छी भी। आप भी तो अलग लग रहे हैं, वैदेही ने जवाब दिया। जहां वैदेही अपने सामान्य कपड़ों में थी, वहीं यशवर्धन भी रात होने की वजह से नॉर्मल ट्राउज़र और टी शर्ट में था। हमेशा जब आपको सफ़ेद कुर्ते पजामे में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपने राजनीति का चौगा ओढ़ रखा है। हाँ, तब आप उस यशवर्धन सिंह से मिल रही होती हैं जो महाराष्ट्र विकास पार्टी का नेता है, और आज आप हमसे मिल रही हैं। हम यश, हमारे अपने हमें इसी नाम से बुलाते हैं, यशवर्धन ने कहा। क्या आप सचमुच पॉलिटिक्स में आना चाहते थे? शायद नहीं, यशवर्धन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा। हमें पॉलिटिक्स पसंद ज़रूर है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट, हम इसे करियर के रूप में कभी ऑप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन डैड के एक्सीडेंट के लगभग 2 साल पहले ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उनकी देखभाल करने के लिए हम हर वक्त उनके साथ रहते, और साथ रहते रहते कब इसके आदि हो गए पता ही नहीं चला। वैसे हम एक स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते थे। स्क्रिप्ट राइटर काफ़ी यूनिक प्रोफेशन है। स्क्रिप्ट राइटर का पता नहीं, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको स्पीच राइटर बनने का मौका ज़रूर मिल सकता है यशवर्धन जी। प्लीज़ अब आप भी फॉर्मैलिटी मत कीजिए, आप हमें यश बुला सकती हैं। अगर फॉर्मैलिटी नहीं होती तो आप मुझे ज़रूर बताते कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने उन गुंडों की जान ली। आपने उस दिन कहा था कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप पर हमला किसने करवाया है, उसके बावजूद आप मुझे उसका नाम नहीं बता रहे, वैदेही ने पूछा। आप अभी भी वहीं अटकी हैं? क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा है कि जब तक एक केस सॉल्व नहीं हो जाता दूसरे की तरफ नहीं बढ़ सकते, वैदेही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर हम आपको बता भी देंगे तो क्या हो जाएगा? आप अच्छे से जानते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कि क्या हो सकता है वैदेही, तभी हम आपको नहीं बताना चाहते। हमें पता है कि हम उनका नाम बता देंगे तो आप उनके पीछे जाएंगी और फिर वही होगा जो हम नहीं चाहते, यशवर्धन ने तैश में आकर जवाब दिया। उसकी गुस्से में बात करने की वजह से वैदेही भी चुप हो गई। उसे चुप देखकर यशवर्धन ने अपने गुस्से को काबू किया और प्यार से समझाते हुए कहा, वैदेही, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई भी खतरा आए। आप जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो मेरा काम है, आप मुझे यहाँ से बचा लेंगे तो क्या हुआ, मेरा काम मुझे किसी न किसी खतरे तक पहुँचा ही देगा। फिर भी आपको नहीं बताना तो मैं आगे से नहीं पूछूंगी, मुझे मेरा मोबाइल लौटा दीजिए, मैं जा रही हूँ। वैदेही अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और मोबाइल मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आपका फ़ोन ऊपर कमरे में है, हम लेकर आते हैं, यशवर्धन ने कहा और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। उसके यहाँ से जाते ही वैदेही ने खुद से कहा, कुछ सोच वैदेही, उसके बाद तुम्हें इससे मिलने का मौका फिर नहीं मिल पाएगा। वैदेही वहाँ घूमते हुए अपना दिमाग लगा रही थी, तभी यशवर्धन वहाँ आ चुका था और उसके हाथ में वैदेही का फ़ोन था। थैंक्स, वैदेही ने अपना मोबाइल पकड़ते हुए कहा, कॉफ़ी अच्छी थी, यशवर्धन ने उसे मुस्कुराकर वेलकम कहा। उसे बाय बोलने के बाद वैदेही वहाँ से जाने लगी। यशवर्धन उसे पीछे से देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, काश हम आपको आज यहीं रोक पाते, इतने सालों बाद इस घर में कोई ऐसा आया है जिससे बात करने का हमारा मन कर रहा है। देसाई जी के अलावा और कोई नहीं है जिसे हम अपने मन की बात बता सके, लेकिन आपसे बात करने के बाद हमारा दिल एक अलग ही सुकून महसूस कर रहा है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप हमारे साथ रुक सके? जैसे ही वैदेही दरवाजे के पास पहुंची, यशवर्धन तेज कदमों के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई, वैदेही जी। अपना नाम सुनकर वैदेही उसकी तरफ मुड़ी और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, जैसे ही यशवर्धन ने कहा, वैदेही के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट थी, मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वो बाहर जाने के बजाय अब वापस यशवर्धन की तरफ आने लगी। हम जानते हैं कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो पार्टी के खिलाफ होगा। ये उस शपथ को तोड़ना होगा जो हमने हमेशा पार्टी की वफादारी को निभाने के लिए ली थी। लेकिन हम दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं। हम जानते थे कि आपको रोकने का बस यही तरीका है। आप हमें अच्छी लगने लगी हैं वैदेही, यशवर्धन ने अपने मन में कहा। चलिए बैठकर बात करते हैं, वैदेही ने उसके पास आकर कहा। यशवर्धन ने हामी भरी। वो दोनों वापस गार्डन में आ गए थे और उसी टेबल पर बैठे थे। आप चाहते तो मुझे पहले भी बता सकते थे। जब पहले आप कुछ बताने को तैयार नहीं थे तो अब अचानक हुए इस बदलाव का कारण जान सकती हूँ, वैदेही ने हैरानी से पूछा। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, साथ ही ये भी जानते हैं कि अभी ये सब बताना जल्दबाजी होगी। एज अ न्यूज रिपोर्टर आप हमें पहले से बहुत पसंद थी। हमने आपसे कहा ना कि हमने आपके हर एक शो को अच्छे से फॉलो किया है, लेकिन जब से आपसे मिले हैं पता नहीं हमें क्या हो गया है जो हम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। यशवर्धन बिना कुछ सोचे समझे अपने दिल की बात बता रहा था। वैदेही को उससे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए जवाब देने के बजाय वो चुपचाप बैठी थी। आपकी चुप्पी हम समझ सकते हैं, आपकी जगह कोई और होता तो उस वक्त उसे भी नहीं समझ आता। हमारे मन में जो था हमने बता दिया। आप हमसे हमारे बदलाव का कारण जानना चाहती हैं तो सुनिए, आपको यहाँ रोकने के लिए हमें इससे बेहतर कुछ और नहीं सूझा। यशवर्धन के मन में जो था वो वैदेही के सामने लग चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके सडन कन्फेशन का मैं क्या जवाब दूं। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए अभी यही कहूंगी कि आपने जिस वजह से मुझे रोका है वो बता दीजिए यशवर्धन जी, वैदेही ने बात को घुमाते हुए कहा। एटलीस्ट अब तो आप हमें यश बोल सकती हैं। कोशिश करूंगी, वैदेही ने जवाब दिया। हम पर उस दिन जो भी हमला हुआ वो हमारी ही पार्टी के एक विधायक ने करवाया था। पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। आप प्लीज जज मत कीजिएगा, लेकिन आप भी अच्छे से जानती हैं कि इस तरह की खबरें बाहर आने पर किसी भी पार्टी की इमेज कितनी डाउन हो सकती है। बस इसी वजह से हम चुप थे। आप मुझे बता सकते थे मैं कौन सा आपकी पार्टी ऑफिस जाकर आपकी शिकायत लगाने वाली थी।
शिकायत तो नहीं लगाती, लेकिन पुलिस को बयान जरूर दे देती। हमें पार्टी का सपोर्ट है, इस वजह से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन आप चुप नहीं बैठती और ये बात आपके खिलाफ जा सकती थी, यशवर्धन ने जवाब दिया। लेकिन आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको तो पार्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है और मैं इस तरह की सिचुएशन का सामना पहले भी कर चुकी हूँ। हम जानते हैं कि आप काफी बहादुर हैं, लेकिन हम पर जिसने हमला करवाया था वो किस हद तक जा सकता है ये भी जानते हैं। जब इतना बता दिया है तो उसका नाम भी बता दीजिए, वैदेही ने पूछा। यशवर्धन थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन वो जानता था कि जब इतनी बात पता चल गई है तो वैदेही को आगे की बात भी बतानी पड़ेगी। ये सब चीजें उसके खिलाफ जा सकती थी, उसके बावजूद वो वैदेही को इन सब के बारे में बताने लगा। हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस विषय में कुछ नहीं करेंगी। लेकिन इस तरह की कोई डील नहीं हुई थी, वैदेही ने कंधे उचकाकर कहा। डील नहीं हुई थी तो आप कर लीजिए। हमने उन गुंडों को क्यों मारा इसकी वजह भी हमने आपको बता दी। हमने ये सब आपकी सेफ्टी के लिए किया था। ठीक है, मैं आपके पार्टी के मामलों में दखलअंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन वो व्यक्ति अगर क्रिमिनल हुआ तो मैं उसके अगेंस्ट सबूत जुटाने की पूरी कोशिश करूंगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह, हम पर हमला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। जैसे ही वैदेही ने वादा किया, यशवर्धन ने बिना सोचे समझे उसे राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम बता दिया। उसका नाम सुनना वैदेही के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। वो जिस केस पर काम कर रहे थे उनमें बार बार ज्यादा से ज्यादा सबूत राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ ही जा रहे थे। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? वैदेही को चुप देखकर यशवर्धन ने पूछा। आप जिस राघवेंद्र प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं क्या ये वही है जो निकोला का विधायक है? यशवर्धन ने हामी भरी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पहले से ही उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपकी पार्टी तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी, लेकिन वो इस विषय में कुछ नहीं कर रही। अगर आपको पता हो तो निकोला और उसके आसपास के एरिया में काफी सारी लड़कियां गायब हो रही हैं, आज से नहीं पिछले 5 सालों से। इन सब में अगर किसी का नाम निकल कर आ रहा है तो वो राघवेंद्र और उसके रिश्तेदारों का। हमें ये सुनकर हैरानी नहीं हुई। हम जानते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानती। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो उन्होंने बाकी छोड़ा हो, यशवर्धन ने बताया। और उसका आप पर हमला करवाने की वजह? पार्टी का एक नियम है कि जीतने पर किसी भी पद के चुनाव पर हर बार योग्यता और बारी के हिसाब से किसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। इस बार मुख्यमंत्री बनने की बारी हमारे पिताश्री हर्षवर्धन सिंह की थी, लेकिन उनकी मौत हो गई है तो उनकी जगह हमें मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। तो वहीं अगर पिताजी मुख्यमंत्री बन जाते तो उनके बाद राघवेंद्र की बारी आती। राघवेंद्र चाहता है कि पिताजी के जाने के बाद ये सीट उसे को दी जाए। जैसे ही यशवर्धन ने बताया, वैदेही के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने उसी अंदाज में कहा, और वो क्रिमिनल मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता, वो इस पोस्ट के लायक ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। काश हम आपकी कुछ मदद कर पाते। हम भी यही चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री ना बने। बस इसीलिए उसके अगेंस्ट सबूत जुटाने की कोशिश की थी। शायद उन्हें पता चल गया और उन्होंने हम पर हमला करवा दिया होगा। क्या? वैदेही ने चौंकते हुए कहा। आप उसके अगेंस्ट सबूत जुटा रहे हैं? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हम भले ही चीफ मिनिस्टर ना बने, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि उस जैसा क्रिमिनल इस पद पर बैठे। वैदेही और यशवर्धन की राहें भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक थी, और वो थी राघवेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। दोनों के इरादे एक दूसरे के सामने आ चुके थे, जहां उन्हें ये तय करना था कि उन्हें वो रास्ता एक साथ तय करते हैं या अलग अलग।